श्री गौरांगाय स्वाहा, श्री गौरांगाय स्वाहा, श्री गौरांगाय स्वाहा। गौरांग महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए, सदा सदा के लिए उनकी प्राप्ति के लिए कितने भक्तजन हैं आप लोग जो हर वर्ष परिक्रमा करने का के लिए आते हैं, नवद्वीप आते हैं, परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, गौर नाम लेते हैं, गौर मंत्र करते हैं, गौर गायत्री करते हैं, प्रति वर्ष आते हैं और चेष्टा है कि गौर हृदय में आविर्भूत हो जाएं, हृदय में गौर खेलें। गौर प्राप्ति, युगल प्राप्ति के लिए गौड़िया वैष्णव को एक साथ श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा और श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा प्राप्त होती है, नित्य सेवा, नित्य पार्षद स्वरूप प्राप्त होता है नवद्वीप में भी और ब्रज में भी। जब पता चलता है कि हाँ गौड़िया वैष्णव के दो स्वरूप होते हैं ब्रज में भी और नवद्वीप में भी, इसी बात को जान के हम सत परंपरा से जुड़ते हैं, चाहे वो वक्रेश्वर पंडित से आ रही हो, नित्यानंद प्रभु से आ रही हो, गदाधर पंडित से आ रही हो, जो भी 500 वर्ष प्राचीन परंपरा है उन परंपरा से जुड़ते हैं और वहां से हमें मंत्र प्राप्ति होती है। ब्रज के मंत्र भी होते हैं और नवद्वीप के मंत्र भी होते हैं, और यदि मंत्र का सही रूप से हम प्राणपन से उच्चारण करेंगे भीतरी रूप से, तो हमें निश्चित रूप से गौरांग महाप्रभु का साक्षात्कार होगा ही होगा, उसमें एक क्षण का भी देर नहीं लगेगा। आज का सत्र आपने देखा, इन भक्तों को महाप्रभु ने इंस्पायर करा कि मंत्र के ऊपर नाटिका प्रस्तुत करें। आपने देखा नाटिका में कि वह ब्राह्मण जिनको शशि माता और उन्होंने बोला कि आप रंधन करें हमारे घर पे और भोजन अर्पण करें श्री हरि को, तो ब्राह्मण रंधन कर रहे हैं और अर्पण करते हैं, करने ही वाले होते मंत्र उच्चारण करते हो क्या होता है आ जाते हैं। ऐसी ठाकुर जी सबके साथ आती है, मंत्र उच्चारण कर रहे हो ठाकुर जी ना, ऐसा हो कैसे सकता है। वो साक्षात मंत्र और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। जब हम गौरांगा स्वाहा कर रहे हैं तो गौर और गौर मंत्र में कोई भेद नहीं है। हम इतने समय से मंत्र कर रहे हैं तो साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्या हम सही रूप से मंत्र का अर्थ भी जानते हैं। गौरांगाय स्वाहा, हे राधा कृष्ण मिले तनु, हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपको शरणागत होता हूं और शरणागत होता हूं पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता हूं और अपने आप को आपकी चरण सेवा में नियुक्त करता हूं। ये होता है, इसका अर्थ होता है गौरांगाय स्वाहा, मैं अपना आत्मसमर्पण करके अपने आप को आपकी सेवा में सदा सदा के लिए अर्पित करता हूं। स्वाहा, यज्ञों में भी आप उच्चारण करते हैं स्वाहा। स्वाहा क्या होता है? आहुति। जब आप थाली में से आहुति डालते हैं तो क्या कुछ, जब आपके हाथ में आहुति है आपने डाला तो कुछ बचा, बचता है कुछ आहुति डालने के बाद? नहीं बचता। एक बार में आहुति खत्म हो जाती है ना, उठाया स्वाहा किया, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती क्योंकि आप स्वाहा कर चुके हो। स्वाहा होता है पूर्ण रूप से भस्मीभूत कर देना, जो वस्तु है जिसका स्वाहा किया गया है वो पूर्ण रूप से भस्मीभूत हो जाती है। तो गौरांगाय स्वाहा में किसका भस्मीभूत करना है? स्वयं का। हम मंत्र कर रहे हैं, बाबा महाराज यही कहते हैं कि गायत्री करते हुए, मंत्र स्मरण करते हुए क्या करना चाहिए, मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। हम मंत्र कर रहे हैं गौरांगाय स्वाहा, क्या चिंतन कर रहे हैं उस समय कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से एक तिनका भी मेरा अस्तित्व ना रहे। स्वाहा का मतलब होता है मेरा अस्तित्व ही ना रहे, मेरा अस्तित्व नहीं रहा बिल्कुल, इसी का मतलब है स्वाहा। स्वाहा व्यक्ति तब करेगा जब वो हृदय से मानेगा कि आप ही मेरा जीवन हो, यू आर माई वेरी लाइफ, हे गौरांग महाप्रभु आप ही मेरा जीवन हो, तभी तो मैं उनके चरणों में स्वाहा करूंगा, शरणागत होऊंगा, अन्यथा क्यों होंगे। मंत्र मैं कर रहा हूं, क्या मैं इस चेतना से कर रहा हूं? क्या मैं मंत्र करने के बाद भी अपने आप को बचा के रख रहा हूं? यदि बचा के रख रहा हूं तो लाभ क्या हुआ मंत्र करने का? मंत्र तो स्पिरिचुअल है, यदि हम अपने आप को बचा के रख दिया मंत्र करने के बाद तो वो रिचुअल बन गया, स्पिरिचुअल से रिचुअल, क्योंकि उसमें स्पिरिट चली गई। स्पिरिट क्या थी? कि मैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता हूं हे महाप्रभु, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। मैं अब से केवल अपने आप को आपके सुख का निमित्त बना के अनंत काल तक जीवन जीना चाहूं। आज सुखी हो उस यज्ञ में मैं एक निमित्त रहना चाहता हूं सिर्फ। स्वाहा का मतलब है मैं अब रहा ही नहीं। कौन रहे? आप रहे और आपका सुख रहा और मैं केवल यंत्र बन गया। मेरा ना अस्तित्व रहा कि मैं कुछ हूं, मुझे कुछ चाहिए, मेरा कोई है, ये कुछ भी नहीं रहा। ये मंत्र करते मैं कोई हूं, कुछ भी हूं, मेरी कोई आइडेंटिटी है, ये तो रहा ही नहीं। इसी का तो स्वाहा किया। अच्छा, क्या पहले आइडेंटिटी थी? अच्छा, पहले भी नहीं थी। जो एक भ्रम डाला हुआ था कि मैं कुछ हूं, उसका स्वाहा किया आपने। आपने भ्रम डाला कि आप पुरुष हो जबकि आत्मा हो, तो स्वाहा किसका किया? उसी भ्रम का। समझ रहे? आपने भ्रम डाला हुआ है कि मेरा कोई संबंधी, मेरी पत्नी है, मेरी मां है कोई, मेरे बच्चे हैं कोई, ये भ्रम है। जबकि भगवान फोक बजा के कह रहे हैं मम एव अंशु, तुम केवल मेरे और मैं और तुम्हारा कोई नहीं है। जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो दीक्षा मंत्र साहब ये बता रहे हैं हमारे को, गौरांगाय स्वाहा मंत्र प्राप्त होता है जैसे, ये बता रहे हैं कि इनके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, समझ लो अच्छे से, और इनके अतिरिक्त सुख भी कहीं नहीं है, ये भी अच्छे से समझ लो, तब ये मंत्र सही से कर पाओगे। अगर तुम्हारा ईश्वर के अलावा कोई है तो उस मंत्र की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वाहा हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? आप जब कर रहे हो गौरांगाय स्वाहा और आपका कोई है तो कैसे स्वाहा आहुति कहां हो रही है? वो तो केवल एक शाब्दिक उच्चारण है मानस में। गुरुदेव ने जब मंत्र दिया है तो उन्होंने ये साथ में भीतरी आकांक्षा करी है अपने शिष्य से कि प्राणपन से मंत्र को उच्चारण करना, प्राणपन से प्राणों की आहुति डाल के अपने मंत्र का जप करना। स्वाहा, स्वाहा माने वो भक्त, वो साधक उच्चारण कर सकता है सही रूप से। वो कह रहे हैं गौरांगाय स्वाहा, गौरांग महाप्रभु आपो, मैं आपका सेवक हूं और केवल आपकी सेवा करने की मेरी अभिलाषा है। ओ त्रिकाल में कुछ नहीं है, तीनों लोकों में कुछ नहीं है, कोई है या नहीं मुझे मतलब नहीं, कोई है या नहीं मैं जानता नहीं, कोई है या नहीं मैं मानता नहीं, कहीं सुख है मैं जानता नहीं। स्वाहा तब होगा जब भगवान को बोलेंगे भगवान यू एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट एंड माई लविंग सर्विस टू यू एग्जिस्ट, उसके अलावा नथिंग एग्जिस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये होता है गौरांगाय स्वाहा। हमने किसी को अपना माना हुआ है तो कैसे मंत्र सिद्धि होगी? आप अपने आप से विचार करें कैसे मंत्र सिद्धि होगी। हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के गायत्री करते हैं, मंत्र स्मरण करते हैं, तो वो माइंडलेस रूप से बस कर रहे हैं, माइंडफुल नहीं है। स्वाहा करा वो फिर मैं बच गया वापस, ऐसे कैसे हो सकता है? कई बार क्या करते हैं, प्राणठ नादे मैं बस गायत्री करके आ रहा हूं, ऐसे स्वाहा कैसे होगा भाई? हाँ, आपका तो स्वाहा है नहीं, स्वाहा तो आपके भोजन में है आपका। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मंत्र के बाद मेरे कुछ करना, ये नहीं होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना मुझे मंत्र के बाद, क्योंकि करना है तो आपका ध्यान मंत्र में नहीं होगा, आपका ध्यान भोजन में होगा। मंत्र स्मरण करना वो विधि नहीं है जिसके बिना कुछ खा नहीं सकते, हम सोचते खाने से पहले मंत्र करना होता है क्योंकि हम दीक्षित, इसलिए थोड़ा मंत्र दिए गुरुदेव ने। वो तो कह रहे हैं अपना समर्पण कर दो पूर्ण रूप, तुम बचो ही नहीं। हमने मंत्र स्मरण किया, बचे हम पूरे के पूरे, तो कैसा मंत्र स्मरण हुआ? और ये तो एक मंत्र का हमने बताया स्वाहा गौरंग है, वैसे क्या है? नित्यानंद आय, अद्वैत चंद्राय स्वाहा, गदाधर पंडिताय स्वाहा, शिवास पंडिताय स्वाहा, छह बारी तो नवद्वीप में स्वाहा कर रहे गुरुदेव आय स्वाहा, छह बार ब्रज में स्वाहा कर रहे और पूर्ण के पूर्ण बचे हुए। एक बार स्वाहा करके आप नहीं बच सकते, एक मंत्र में स्वाहा करना अगले मंत्र के लिए आप बच नहीं सकते। हमने छह पर्सनैलिटीज को स्वाहा किया, पूरी पूरी माला कर डाली, उसके छह ब्रज में किए और हम एज इट इज वापस निकल के आए। सत्यता से एक बार भी स्वाहा नहीं किया, एक बार किसी को गौर को किया नहीं, निताई को किया नहीं, गुरुदेव को किया नहीं, मैं तो बचा हूं पूरे का पूरा, मैं बचा हूं, मेरी लाइकिंग्स बची हैं, मेरी डिसलाइकिंग्स बची हैं, मेरा गुस्सा बचा है, मेरा पुरुषपना बचा है। बोला है ना सामने बताना, ये पुरुषपना, पुरुष मंत्र स्मरण करते हैं, स्त्रीपना पूरा मांपना बचा हुआ है, बहुपना बचा हुआ है, स्वाहा किस चीज का हुआ? सारे पने बचे हुए हैं, मेरी सारी डिसलाइकिंग्स बची है, मेरी सारी लागे बची है। उस समय चिंतन क्या हो रहा है कि मैंने ये मंत्र स्मरण करते, मैंने बिजनेस के लिए ये करने जाना है, मैंने आज घर के ये काम करना है, मंत्र स्मरण में ये नहीं, जागृति तो एक कण भी नहीं होना चाहिए। ये यज्ञ है, यज्ञ श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञ में स्वाहा होता है, जप यज्ञ में भी स्वाहा ही तो होता है। वो यज्ञ में स्वाहा के बाद कुछ बचता नहीं है, ये यज्ञ में भी स्वाहा के बाद कुछ नहीं बचना चाहिए। कम से कम जैसे आप यज्ञ में कभी बैठे हो, तो यज्ञ में बैठते हैं उसके उठते हैं तो आपको उसके कई घंटे बाद भी ना एक नशा सा छाया रहता है कि मैं एक यज्ञ में बैठा था। वो सामग्री, वो हवन कुंड, वो फोटोएं, वो फूल मालाएं, वो केला, वो हलवा, पताशा, फुलियां, वो एक नशा सा छाया रहता है, मैं यज्ञ में बैठा हुआ था। उसी प्रकार से जब हम मंत्र स्मरण करके के उठते हैं, वो कम से कम नशा काफी देर तक छाया रहना चाहिए। मैं यज्ञ करके उठा, स्वाहा अंदर वही चल रहा होना चाहिए। हालत खराब हो जाती है, मंत्र स्मरण करो सही रूप से, अनुभव की बात बता रहे हैं। जो व्यक्ति जैसे बैठता है खड़ा नहीं हो सकता, वैसे अनुभव की बात है। आपने इतना स्वाहा किया तो वैसे खड़े कैसे हो सकते हो? इतना नशा, मतलब पूरा अपने आप को स्वाहा कर दिया, प्राणपन से मंत्र किया। महाप्रभु जब दीक्षा हुई उनकी, जब वो आए तो महाप्रभु के अंदर पहले वाला कोई चिन्ह ही नहीं रहा। यही हम कह रहे हैं, आपकी किसी की दीक्षा हुई है तो पहले वाला चिन्ह नहीं रहना चाहिए। मैं वही का वही तरुण, वही की वही पत्नी, वही के वही बच्चे से आ सकती, वही की वही घर से आ सकती, वही की वही धन से आ सकती, वही की वही क्या कहेंगे लोग, ये सब आ सकती हैं, वही की वही भोजन से आ सकती हैं, बढ़ती हुई आ सकती हैं। स्वाहा किस चीज का? सुबह क्या कर रहे हैं? पैरट रेसिटेशन कर रहे हैं? तोता रटी बात, तोते को कोई भी मंत्र रटवा दो तो तोते को मंत्र की सिद्धि हो जाती है क्या? तोते को भले हो जाए क्योंकि वो अपराध नहीं कर रहा, हमें तो बिल्कुल नहीं होगी। गौरांग गाय स्वाहा के अंदर सिर्फ गौरांग महाप्रभु बचे, उनका सेवक बचा और सेवक के अंदर अपना कुछ नहीं बचता। हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपके दास्य रूप में मिलियंस ऑफ इयर्स आपको अपने दास्य रूप में, आपको अपने मालिक रूप में स्वीकार करता हूं, आपकी दासता में अपने जीवन व्यतीत करना है तो अपने मिलियंस ऑफ इयर्स नहीं, ट्रिलियंस ऑफ इयर्स नहीं, जिलियंस ऑफ इयर्स वो भी नहीं, अनादिकाल तक अनकंडीशनली, मेरी कोई कंडीशन नहीं है, आप मेरा सुख दुख हटाओ, ये करो वो करो, ये कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। मेरे को मतलब ये है आपकी प्रीति और स्वाहा, मेरा कुछ शेष ना रहे, मेरा कुछ शेष ना रहा, अस्तित्व ही नहीं बचा, अपना अस्तित्व मिटा देना ही स्वाहा है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा, मेरे को ये भी भान नहीं रहा कि मैं स्त्री या पुरुष हूं, मैं तो पूरी भान रहता है मैं, मेरा बेटा बेटा ये नहीं खाया तूने, मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है। आपकी माँ भी यही बोलती थी आपके बारे में, वो उनकी माँ भी यही बोलती थी, और थोड़ी देर बाद सब बेटा बेटे मैटाडोर बन जाते हैं। ये स्वभाव होता है, सोचो किस हद तक का स्त्रीपना पुरुषपना हमारे अंदर घुसा पड़ा है, समझ रहे हैं? आपने ईश्वर को स्वाहा होना था, आप पूर्व बच के कैसे आ गए? आप तो पंडित हो, स्वाहा के बाद तो कोई बचता ही नहीं है। स्वाहा जब किया तो ना शुभ बचा ना अशुभ बचा आपका, आपकी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं बची, आपकी बुरी क्वालिटी, सबका स्वाहा हो गया, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं। स्वाहा मतलब माने कुछ नहीं बचा, कोई लाइकिंग कोई डिसलाइकिंग, एम्बिशंस, एम्बिशियस होना, मेरी सारी एम्बिशन क्या है? आपकी प्रसन्नता। कब? अगर ध्यान दो, अगर गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति करना या उनकी प्रसन्नता का लक्ष्य केवल जीवन होगा तो कभी प्राप्त नहीं होगा। गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता हमारे प्रत्येक दिन का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? नहीं, गलत है। प्रत्येक दिन का नहीं, प्रत्येक घंटे का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? नहीं, ये भी गलत है। प्रत्येक घंटे का नहीं, प्रत्येक मिनट का लक्ष्य होना चाहिए, ये ठीक है? ये भी गलत है। प्रत्येक क्षण का लक्ष्य होना चाहिए, इसको कहते हैं स्वाहा। जब आपने स्वाहा किया तो आपका अपने कोई लक्ष्य नहीं है, आपका अपना कोई, कि टंडन के बच्चों में उसको क्या, तो टंडन कौन है, टंडन के बच्चे कौन, दोनों ही स्वाहा हो चुके। गौर प्रीति में स्वाहा, हम मंत्र स्मरण कर सो जाए उसने मेरी इज्जत नहीं करी, ये कौन सा मंत्र स्मरण हो रहा है? मंत्र स्मरण तो अपनी इज्जत का हो रहा है, मेरी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, ये स्मरण हो रहा है, समझ रहे? महाप्रभु जब दीक्षा उनकी हुई तो पुराना कोई चिन्ह ही नहीं बचा उनका, चिन्ह ही नहीं बचा। अब सोचो पहले वाला भाव बिल्कुल ही चला गया। हम भी मंत्र स्मरण करते हमारे चिन्ह बचते, चिन्ह नहीं मूर्तिमान स्वरूप में वापस आते, जबकि भाव चिन्ह भी नहीं बचना चाहिए। मंत्र स्मरण करो, इतना प्रबल अग्नि है उस मंत्र स्मरण में, इतना तेज प्रकट हो जाता है कि कई बार शरीर में तेज को झेल नहीं पाता। मतलब उसका सार बात यह है कि मंत्र इतने शक्तिशाली होता है कि यदि आप प्राणपण से उच्चारण करोगे आपका शरीर में, आपका शरीर मंत्र को झेल नहीं सकता। शरीर में उतनी शक्ति नहीं है कि मंत्र झेल दे, ये बड़े शक्तिशाली मंत्र, इतना शरीर नहीं झेल पाता, बहुत मुश्किल होता है। बस सत्यता से लेना है। अब असत संग करते हुए यदि कोई मंत्र स्मरण करेगा, असत संग वृत्ति का, अच्छा स्वाहा किससे होना था? वृत्ति से, मन की वृत्ति को तो स्वाहा करना था कि मैं आपका हूं ठाकुर, आपके अलावा मेरा कोई नहीं, यही स्मरण का अर्थ है। आपकी प्रीति के अलावा मैं कुछ नहीं जानता मानता चाहता, तो ये वृत्ति ही तो लगानी थी ठाकुर जी में, और ये वृत्ति असत्संग में लगी। असत्संग क्या है? कि मेरा कोई है, मेरा परिवार है, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरी बीवी है, कोई बच्चे हैं, यही तो असत्संग है। मेरा तो कोई है ही नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे को लगता है मैं खाता हूं, मैं ये खाऊंगा, ये तो असत्संग है। वृत्ति कहां लगी है? मेरा कोई है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये खाऊंगा, और इसी वृत्ति को तो शरणागत करना था। ये वृत्ति गलत जगह लगती है तो वो सही जगह लग कैसे सकती है? तो अगर मंत्र स्मरण कर रहा है तो अच्छे से समझ लो, सुख बुद्धि व संबंध बुद्धि संसार में नहीं होनी चाहिए, किसी से संबंध नहीं है, ये दृढ़ विश्वास हो, कमिटेड हो हमारी बुद्धि, मेरा किसी से संबंध नहीं है। ये सब ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिर मात्र है, जिसका स्टेशन जब आया वो उतर जाएगा, मेरे लिए ना आया है ना मेरे लिए रुकेगा। मेरा संबंध नहीं था किसी से, ना है ना हो सकता है, जिससे है उससे मेरा मंत्र, उसी का मंत्र कर रहा हूं मैं। एक बात, अगर मंत्र की सिद्धि चाहते हो, ये प्रथम बात है, मेरा संबंध किसी से नहीं है। दूसरी बात, सुख बुद्धि संसार में, भोजन में कोई सुख नहीं है, गांठ बांध दो, बहुत बड़ी बीमारी है भोजन में सुख है, सुख नहीं है। घूमने जाना, जब तक ये चीजें हैं भूल जाओ, कोई मंत्र से कोई लेना देना है आपका असली? एक मंत्र करने के बाद कोई नहीं बचता, या तो 6-6% से 12% इसको गौड़िया वैष्णव मंत्र स्वाहा कर रहे हैं, और सब असत्यता से तोता रटा कर रहे हैं। मंत्र स्मरण जब करो, ध्यान दो, पूरा विश्वास करो आखिरी बारी भगवान मौका दे रहे हैं मुझे, दोबारा नहीं कर पाऊंगा, जो करना लगा दू अपना दाव पूरा प्राणपन से, और मुझे कोई जल्दी नहीं करनी माला। कितना बजे घर से निकलना? 7:30 शुरू करता हूँ, आधे घंटे में हो जाएगा, 7:30 नाश्ता करना, 7:45 चले जाना। ये मंत्र स्मरण नहीं होगा कभी। अगर आपको 7:45 निकलना था हाँ, तो 7:00 शुरू ना करो, 6:30 या 6:00 शुरू करो, ताकि खत्म करना ही कोई जल्दी ना हो। खत्म करो तो आपका मंत्र को मैंने तो कुछ और करना है, स्वाद का हुआ, प्रेम प्राप्ति की भीख का मांगी। जब मंत्र स्मरण कर रहे हैं ठाकुर जी आखिरी बारी मौका दे रहे हैं मुझे करने का, बस आखिरी, हर मंत्र में तन्मयता विद्मह है, जानता हूं विश्वम्भर आयो प्रेम देने के लिए सबको, कृतार्थ किया है तन्नो, आप मेरे अंदर प्रकृष्ट रूप से उदय हो। प्रकृष्ट माने पूर्ण रूप से, इनियर फुल ग्लोरी। हम तो हमारे हृदय में अपने बच्चों को पत्नी का पूरा फुल ग्लोरी में समाये हुए हैं, तो कहां से मंत्र स्मरण और मंत्र सिद्धि कुछ होगा? पहले तो ये मानना होगा करने से पहले, एक तो मंत्र स्मरण सीधा उठते ही कोई नहीं उठते माने तिलक लगाते ही कोई नहीं करना चाहिए। बोले तिलक आपने तो बोला तिलक, हमने बोला तिलक लगा भी करो, पर तिलक लगाते ऐसे रिचुअल के रूप में मत करो। पहले बैठो, अपने आप को बोलो मैं एक यज्ञ में बैठने वाला हूँ, सबसे बड़ा यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञ में बैठने वाला हूँ। यज्ञ पहले अपने मानस को बनाओ, अपने मानस को डालो, मैं यज्ञ में बैठने वाला हूँ आहुति डालने के लिए। और किसकी आहुति डालनी है अपने आप को पहले समझाओ, पहले तो मैं यज्ञ में बैठने लगा हूं, आहुति डालने लगा हूं, किसकी? स्वयं की, और मेरा कोई बचना नहीं चाहिए। कल बच गया, आज नहीं बचना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं पंजाबी हूं, दिल्ली का हूं, इंडिया का हूं, मेरी बहू है, मैं किसी की बहू हूं, ये सब कुछ नहीं बचना चाहिए। असत्संग त्याग करके, बहुत शुद्धि करके, बहुत शुद्धि है, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, कोई संसार है ही नहीं। हर क्षण आपकी प्रीति आपकी प्रसन्नता ही मेरी एकमात्र कामना है, मेरा जीवन केवल आपके लिए है, ये परिवार मैं आपके दास रूप में सेकेंडरी बिजनेस साइड बिजनेस कर रहा हूं, वो भी आपके लिए। हम तो ऐसे डूबे हैं परिवार में जैसे परिवार प्राप्ति किसी शास्त्र में लिखा हो, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। स्वाहा, जैसे श्रीवास पंडित है, ऐसा अपना स्वाहा किया हुआ बेटे का, अभी आपने नाटिका करी, बेटे की मृत्यु है, कोई मतलब ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? गौर प्रीति में कुछ नहीं विघ्न आना चाहिए, नहीं तो मैं शरीर का स्वाहा कर दूं, वृत्ति का तो किया हुआ है स्वाहा, ये व्यक्ति दिख रहा है इसका भी स्वाहा कर दूं, अगर गौर प्रीति में कोई विघ्न आया। आचरण से दिखा रहे हैं, नाटिका नहीं है, नाटिका हमारे हमारे को शिक्षा देने के लिए। मंत्र से तुरंत साक्षात्कार होता, सालों बाद नहीं होता। बोले मैं तो सालों से कर रहा हूं, क्या सालों से कर रहे हो? स्वाहा पता भी है कि स्वाहा करना किसका है, अपना कुछ बचना नहीं चाहिए। जो भक्त चाहता है कि चीजें एज इट इज रहे हैं सब कुछ, और वो भक्ति भी करना चाहता है, ये समझ लो कि ही कैनॉट एंटर, ही कैनॉट इवन एंटर स्पिरिचुअल लाइफ। सिद्धि तो दूर की बात है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश भी नहीं कर सकता, चाहता है एज इट इज सब कुछ रहे। मैंने मेरी दीक्षा हो गई, पर मेरी दीक्षा एक एडिशन इन माई लाइफ है, देयर इज वन लाइफ जो मेरी है, उसमें दीक्षा एक एडिशन टू है। जैसे खाना पूरा है, सलाद डाल दिए थोड़ी, ये भक्ति सलाद के रूप में मैं ले रहा हूं, नहीं यही मेरा पनीर, यही रोटी, यही सलाद, यही चटनी, यही पानी, यही ये सब कुछ है। जो ये सोचता है मेरी लाइफ एज इट इज रहे, वो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश ही नहीं कर सकता, सिद्धि तो बड़ी दूर की बात। हम सोचते हैं स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है इन एडिशन टू नॉर्मल लाइफ, ये एक नॉर्मल लाइफ होती है, एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है। मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूं, थोड़ा सा थोड़ी एडिशन कर ली अपनी नॉर्मल लाइफ में और मैं भगत बन गया। ये जो भक्त हैं, जो भी एक सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ मानते हैं, साथ में भक्ति को मानते हैं, ये भक्तों के लिए कहा गया है श्लोक, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म कर लो मंत्र स्मरण गायत्री योग पीठ, क्योंकि आपने हृदय से नहीं किया तो उनके हृदय को कैसे छुएगा? भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं, उन्होंने देखा मंत्र स्मरण किया, मंत्र वो भाव ग्रही जनार्दन है, वो शाब्दिक शब्द ग्रही है ही नहीं। अब हमें विचार कर रहे थे, आप कीर्तन करते हैं परिक्रमा में, शयने स्वपने गोरा गौरांग है, शयन माने सोना, स्वपन माने शयन के बाद एक स्थिति आ जाना, उसमें गौरा गौरांग है, शयन में गौरांग है, हमारे मंत्र स्मरण में गौरांग नहीं है। मंत्र स्मरण में भी मैं हूं, मेरी इच्छाएं, मेरे फ्यूचर है, मेरी प्लानिंग है, मेरे इनसिक्योरिटीज है, मेरे एम्बिशन है, मैं और मैं ही तो हूं। और बोल क्या रहे हैं कीर्तन में, शयन स्वपन है गोरा गौरांग, तुम्हारे मंत्र में गौरांग आया, शयन स्वपन में उसके बाद आएगा। स्थिति जाने हम स्वयं की और निर्णय ले, खत्म कर दिया मैंने इस व्यक्ति को, शिष्य में दिखता था, अपने जिंदगी से रहित कर दिया मैंने उसको, हटा दिया मैंने, तिरस्कार कर दिया उसने, मैं तरुण का तिरस्कार करता हूं, मर गया तरुण मेरे लिए, ये पहले निर्णय करो फिर मंत्र स्मरण करो, मर गया तरुण किसके लिए, मेरे लिए, मर गया वरुण मेरे लिए, मर गया वरुण। अब बैठो यज्ञ में, स्वाहा आएगा नहीं सही से, स्वाहा वरुण का स्वाहा हो गया, ये स्वाहा कर रहे हो तो ये मत सोचो कि ये वरुण है जो शरणागत होना चाहता है, क्या आत्मसमर्पण समर्पण करना है, क्योंकि आप तो पहले कुछ हो जो समर्पण करना चाहते हो, आप तो कुछ हो ही नहीं, चिन्ह में सत्ता मात्र हो, वरुण शरणागत नहीं हो रहा, आप आत्मा हे महाप्रभु। तव शिक्षाश्रम में बताया गया कि मैं किसी प्रकार से आत्मा मैं भटक रहा हूं, मैं आपके चरणों की शरणागत होना चाहता हूं, मैं आत्मा, मैं अपने को आत्मा मान के शरणागत हूं, ना कि वरुण मान के, क्योंकि आपने वरुण माना तो आप तो कुछ हो गए पहले, शरणागत किसको करोगे फिर, मैं वरुण आपको शरणागत होना चाहता हूं। अरे भाई इसी को तो जीवन से हटाना था, ये तो लग, ये, इसको तो आपने बेस मटीरियल बना लिया, समझ रहे हमारी भाषा, मैं चेतन नहीं हूं यही तो बात समझ नहीं थी, मैं चेतन शरणागत होता हूं, मैं चेतन नहीं हूं यही तो बात समझनी है। कोई डायलेमा अगर होगा, डायलेमा समझते हो, संशय डाउट वहम कि मैं आत्मा हूं नहीं हूं, मैं पुरुष हूं मेरी ड्यूटी है, ये इतना सा भी वहम रहेगा तो मंत्र नहीं कर सकते, स्वाहा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगेगा आप तो कुछ हो, आपकी ड्यूटी है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, आपको रेपुटेशन करनी है, आपको खाना खाना है, आपको घूमने जाना है, स्वाहा किसका करोगे, इसी का तो स्वाहा करना था, स्वाहा तो इसी का करना था, मी माई लाइक्स माई डिसलाइक्स, मी नहीं रहा तो लाइक्स और डिसलाइक्स कहां से रहेगी, अपना अस्तित्व नहीं है सेपरेट। मंत्र करने बैठ रहे पहले शांति से बैठो, बाद में मंत्र करना, मैं यज्ञ में बैठ रहा हूं आहुति डालने के लिए, बहुत गंभीर कार्य के लिए मैं बैठ रहा हूं, मैं कोई भोजन करने से पहले की क्रिया करने के लिए नहीं बैठ रहा कि आधे घंटे कुछ कर लो फिर भोजन खाएंगे बैठ के, और रात को फरमाइश पहले कर दी गई है, सुबह तो मैं पूड़ियां खाऊंगा और सुबह मंत्र स्मरण कर लूंगा, इसलिए हम कहते हैं कभी मत बोलना मुंह से मुझे कुछ चाहिए, और मुंह से भी गलती से मत बोलो कि मेरा कोई है, लज्जा के मारे मर जाए हमारे मुंह से निकले मेरी कोई मम्मी पापा बेटा पत्नी कोई है, लज्जा के मारे मर जाए, शर्म के मारे मर जाए, मेरा शाम सिवा गौर सिवा गौर बिना क्या है अनिज गौर बिना अर्जनीना गौर गौर बिना अर्जनीना गौरांग, मैं गौर के बिना किसी को नहीं जानता, इनमें से कोई गौर नहीं है, इसका मतलब इनमें से मेरा किसी से संबंध नहीं, कभी मत बोलो मुंह से या भीतर से मेरा कोई है, मंत्र स्मरण नहीं कर पाओगे, रहस्य बता रहे हैं आपको, मन के किसी वृत्ति में बिना रह जाए, इतनी सारे नस्य नाड़ियां हैं कहीं पे भी ना रह जाए मेरा कोई है, और हमारा क्या है हर नस नाड़ी में व्याप्त है, ये मेरा बेटा ये मेरा लाडला है ये मेरी लाडली है ये मेरा ये है मैं इसका लाडला हूं वो मेरी जीवन साथी हो चुका मंत्र स्मरण, समझ रहे हो कितनी गंभीर बात है, भाग है ये सुनने को मिल रहा है, ये रहस्य है सुनने को मिलना, इतने बड़े भाग की बात है। महाप्रभु में कोई चिन्ह ही नहीं रहा जब उनकी दीक्षा हुई, पुराना भाव ही कोई नहीं रहा, हमारे में भी यही होना चाहिए, यज्ञ किया आहुति डाली वो व्यक्ति वैसे पूरा ही नहीं रहना चाहिए, कम से कई घंटे तो बिल्कुल ही नहीं होश रहना चाहिए, होश ही नहीं होना चाहिए कि कोई है कोई संसार है मेरी कोई ड्यूटी है मेरा कोई धंधा है मेरा कोई बंदा है मेरा कोई नहीं है, विश्वास करो ये ऐसी स्थिति हो जाती है करने लायक नहीं रहता व्यक्ति कुछ, होश खराब हो जाते हैं, वहां वो यूं उठे, चादर छड़की, सारा उसी समय छड़े, जो भी किया था वो भी छड़ के खत्म, ऐसे उठे चलो चले। हो चुका मंत्र स्मरण, अपने आप को अपने आप से बचाओ, ये आपको खा रहा है राक्षस। राक्षस कौन है बताएं? शीशा देखते हो ना, जो एकमात्र व्यक्ति दिखता है यही राक्षस है, ये आपको खा रहा है। आखिरी बारी मंत्र करने का मौका मिल रहा है और प्राणपण से करेंगे, ये मूल बात है, आखिरी बारी करने का मौका मिल रहा है, इस बात को कभी ना भूलें। जब हम ध्यान दें, जब हम मंत्र स्मरण कर रहे हैं गौरांगाय स्वाहा, उसमें सबसे मूल बात है गौरांग महाप्रभु, वह उनकी प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता हम कैसे करेंगे? जब हम एक किशोर ब्राह्मण रूप में अपने आप को सेल्फ मानेंगे, अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ शुड प्रिवेल। समझो ये बात को, एक एक शब्द पे ध्यान दें। हमारे कथा में ना कोई मजाक, ना कोई स्टोरी, ना कोई चुटकुला, एक एक शब्द पे वैसे ध्यान देना है जैसे इसी से सब कुछ होगा। अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ शुड प्रिवेल, एक न्यू मैं न्यू सेल्फ बन जाए, फिर बैठो। भूतश्रुति इसी को कहा जाता है, भूतश्रुति हम शब्द रूप में जानते हैं। भूतश्रुति क्या है? अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ, मैं एक नया व्यक्ति हूं। क्या हूं मैं? 12 वर्षीय ब्राह्मण, वही तो सेवा करेगा गौर की दिन रात प्रेम से प्रीति से। तो जब आप न्यू सेंस ऑफ सेल्फ आप में आएगा तो आपके न्यू थॉट्स होंगे, पूरे दिन क्या होंगे? न्यू थॉट्स, न्यू फीलिंग्स, न्यू वैल्यूज, नई वैल्यू, नए फीलिंग्स, नए थॉट्स, नई इच्छाएं, न्यू एक्शंस, न्यू डिजायर्स, ये सब होने चाहिए। समझ रहे हो? आप यज्ञ में बैठे हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो? ब्राह्मण के रूप में सिद्धि, 12 वर्षीय, तो वो ब्राह्मण के क्या होती हैं इच्छाएं, वो अलग होती हैं। आप नहीं होंगे ना, जो अभी तक आपकी थी वो तो नहीं होंगी। न्यू थॉट्स, न्यू फीलिंग्स, न्यू एक्शंस, न्यू डिजायर्स, न्यू ड्रीम्स, स्वप्न भी नए होने चाहिए। एक व्यक्ति बिल्कुल नया होता है। आप सोचो ना, अभी जैसे मान लो अभी पंजाबी हो, अभी आपको काया पलट कर दिया जाए सब कुछ, आपको फ्रेंच बना दिया जाए, तो न्यू नहीं बन जाओगे या कुछ भी करोगे, या अंग्रेज बना दिया जाए। उसी प्रकार से आपको नवदीप वासी बनने के लिए आप प्रार्थना कर दो, नए तो हो ही गए ना। यही तो आपने अपने आप को यज्ञ से पहले बताना है, अ न्यू पर्सन, इसका मैं एक नया व्यक्ति जो शीशे में कभी नहीं दिखता। न्यू डिजायर्स पकड़ना पड़ेगा, इस बात को न्यू डिजायर। जो 12 वर्ष का होगा उसकी जो आपकी जितनी भी इच्छा है अभी तक 24 घंटे उसमें से एक भी इच्छा उसकी होगी? तो न्यू डिजायर्स, न्यू एक्शंस। क्या एक्शन की इच्छा होनी चाहिए करने की? चामर डुला, पंखा डुला करो, डायरेक्ट सेवा करो। जब मंत्र स्मरण करने के लिए बैठ रहे हो, अपने आप को बोलो, आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल मटेरियल इमोशंस, लेटिंग गो ऑफ ऑल इमोशंस, जो भी संसार के प्रति इमोशंस रखे हैं, बटूर के रखे हैं, संयोग के रखे हैं, संयोग के रखे, समझते हो? मैंने उसे अपने हृदय की बास्केट में रखा हुआ है, अपने सांसारिक इमोशंस को, तो मैं क्या कर रहा हूं? स्वाहा, स्वाहा किसका कर रहा हूं? अपने इमोशंस का, सांसारिक। जो भी जब हम भक्ति के बारे में चिंतन करते हैं, एक इमोशनल रेजिस्टेंस होता है हमारे अंदर, एक इमोशनल कुछ ट्रैफिक चल रहा होता है थॉट्स का, नहीं नहीं ये मेरे हैं, ऐसे कैसे नहीं है, आप तो भगवान ने दिया है। ये इमोशनल रेजिस्टेंस जितना है इसी का स्वाहा करना, लेट गो ऑफ ऑल इमोशनल रेजिस्टेंस। जो इमोशनल रेजिस्टेंस है उसका क्या करना है? लेट गो। लेट गो इतना सुंदर मंत्र है, लेट गो मंत्र करना, सीधा मत बैठो, हम बार बार बोल रहे हैं, करोगे तो रिचुअल निकलेगा। पहले अपने माइंड को मेकअप करो, इसलिए मेकअप करने के लिए तिलक लगाओ, ऐसे मोटे मोटे तिलक, तभी तो लगेगा मैं भक्त हूं। मंत्र स्मरण के बाद ब्लैंक माइंड होना चाहिए, मैंने कुछ करना है मैं करूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए, करना धरना नहीं है कुछ, क्योंकि आपने कुछ करना होगा ना तो माइंड कहां जाएगा? वो करने में जाएगा, ना कि मंत्र में। और हर मंत्र का चिंतन सहित उच्चारण होना चाहिए, एक शब्द भी बिना पैरटिंग तोता की तरह नहीं होना चाहिए। वो इतने वर्ष से हम क्या कर रहे हैं? तोता की तरह। महाप्रभु आविष्ट चित्त हो जाते थे, उनका बिल्कुल आविष्ट हो जाते थे, जिस भी चीज का वो चिंतन करते उनका रंग बदल जाता था। महाप्रभु कभी तो पीले दिखते थे, कभी श्याम वर्ण दिखते थे, कभी श्वेत वर्ण दिखते थे, वही सोनार को रंग, सोनार कमल बदल जाते, अविष्ट चित्त हो जाता। उनके मुख की भंगिमा, आकृति, प्रकृति सब बदल जाती थी। हमारे सिर्फ भीतर ही बदलने की बात है, भीतर की प्रकृति पूर्ण रूप से बदल जाए। यज्ञ में कुंड में बैठ के यानी कि मंत्र स्मरण करके सेम व्यक्ति उठ गया तो मंत्र स्मरण हुआ ही नहीं ना। और यदि हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी भी कारण से, अपने पत्नी बच्चे या कोई भी कारण से, तो हो चुका मंत्र स्मरण। मंत्र स्मरण सिर्फ वही लड़ाई झगड़ा घूमेगा। और अगर बिजनेस में जाना है 9 बजे और कर रहे हैं मंत्र स्मरण 8 बजे, तो सिर्फ बिजनेस घूमेगा। शांति से समय से उठ के बिल्कुल शांत वातावरण में मंत्र स्मरण करें, उससे पहले खाली बैठे, मंत्र स्मरण करने से भी पहले खाली, पहले तैयारी करें। यज्ञ में बैठते हो ऐसे बैठ के सो आए उठे, हाँ जी चलो यज्ञ में बैठ गए, नहीं, पहले केला लाओगे, धूप लाओगे, अगरबत्ती, घी, हवन कुंड, फिर बैठोगे। माइंड मानस बना लिया आपने, फिर बैठ गए। भगवान ने जितनी शक्ति दी है, जितनी ऊर्जा दी है, सारी झोंक देनी है मंत्र स्मरण कर। मजाल है एक जागतिक चिंतन हो जाए, कोई जागतिक माने पारिवारिक, सांसारिक, पुरुषों की इच्छाएं, स्त्रियों की, पुरुष की स्त्री की, ये कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। किसी पुरुष का स्त्री का, या मैं कोई पुरुष हूं या मैं कोई स्त्री हूं, मेरा कोई पुरुष है मेरी कोई स्त्री है, कोई जगत का चिंतन नहीं है। मैं हूं ये भी चिंतन नहीं कुछ, बस गौर है। और उनकी प्रीति युक्त दास्य की कामना ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। गौर से प्रेम तब होगा जब जानेंगे कि गौर कैसे हैं। तभी तो गौर को शरणागत तो होंगे, तो शरणागत कायक होंगे, वो तो हम जानते नहीं हैं। कौन कैसे जानेंगे गौर को? भगवान महाप्रभु के गुटिका है अष्टकाली लीला, उसको बार बार पढ़ो, जानो गौर कैसे है। चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, सेल्फ रिलाइज सोल से सुनने का मौका मिल जाए तो अति सौभाग्य, ये सौभाग्य मिलना अति कठिन होता है। प्रकट रूप से सेवा करो ठाकुर जी की विग्रह की, जिनके घर प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, प्राण प्रतिष्ठा सुबह या शाम को पूजा पाठ जरूर, चामन बुलाओ, आओ जाओ शाम को गौर आरती करो, नहीं तो मंगला करो, चाहे पुरुष हो स्त्री जो भी काम करते हो। प्रकट रूप से सेवा नहीं करोगे तो मंत्र कहां से चिंतन करोगे सही रूप से? सेवा आज तक गौर की नहीं, तो कामना है कि गौर के नित्य सेवा चाहिए, हो चुका मंत्र स्मरण। और गौर प्रिय जनों की, उसमें गुरुदेव की साक्षात गौर, यद्यपि चैतन्य दास तथा हम जानी कहां प्रकाश, गुरुदेव को साक्षात गौर प्रिय जन के रूप में बैठ के मान के, जो कि वो हैं, उनकी प्राणपन से सेवा करें। साक्षात मान के ये कृपा करने के लिए हमारे सामने विराजित हैं, प्राणपन से सेवा करें। क्या मान के? गौर प्रिय जन, गौर के प्रिय हैं, गौर प्रेष्ठ, प्रेष माने अति प्रिय, अति निज। जब तक 100% कमिटेड नहीं होगे कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, गौरांगाय स्वाहा नहीं हो सकता। क्यों? मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, सुनने में सिर्फ सरल लग रहा है, इसका मतलब यह कि मुझे संसार की वाहवाही से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे संसारिक कोई क्रिटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा है वाहवाही, मुझे उससे कुछ मिलने का, और जो क्रिटिसिज्म कर रहा है उससे कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि जब तक आपको वाहवाही से या क्रिटिसिज्म से अफेक्ट होते हैं आप कि हाँ मेरे को ऐसे बोल दिया, तो आप जो है शरणागति वाहवाही और क्रिटिसिज्म की कर रहे हैं, ना कि भगवान की। आपने जो समर्पण किया हुआ आपने किसको किया हुआ है? अफेक्ट हो ना किससे? क्रिटिसिज्म से। तो शरणागति किसको है? क्रिटिसिज्म को। अपनी वाहवाही को ही तो शरणागत हो, मेरा नाम हो, मेरे को अच्छा बोले, मैं अच्छा बेटा हूं, खत्म। ये इच्छा है ना अच्छी बहू बनने की? नहीं हो सकता मंत्र स्मरण। इच्छा अच्छी बेटी बन जाऊं? नहीं हो सकता मंत्र स्मरण। पिताजी ने बोला देखो वो इतना कमाता है, इनको जी हफ्तों महीनों नहीं बोल रहे मन से बात, मंत्र स्मरण कैसे करोगे? आपको तो छोटी छोटी बातों का इफेक्ट हो जाता है। बोले हाँ जी गुरु जी क्या सोचना चाहिए, सिंपल बात है, उसके प्रारब्ध में जो उसे मिल रहा है, मेरे प्रारब्ध में जो मुझे मिल रहा है, ना किसी का किसी का कंपटीशन ही नहीं है, या सबकी अपनी जर्नी है, खत्म। मेरी जर्नी क्या है, गौरांग है स्वभाव, मैं अपनी जर्नी में चल रहा हूँ, मेरे चाचा के लड़के से कम पैसे कमाऊ, ये मेरी जर्नी थी क्या, इसलिए मैं मत भक्ति में, ये मेरे को बातें इफेक्ट करती है, तो क्या समझ है हमारी सालों बाद भक्ति में, उसको देख वो कितना पढ़ गया, माए पिताएं बोलते हैं मैं बच्चों, उसको देख वो कहां चला गया और तुम कहां के कहां, तो एकदम कमिटेड है कि मेरे संसार की वाहवाही से और क्रिटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आयोटा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे घर में एक बेटे को भाई को बुलाए, एक को नहीं बुलाया, वो भाई दूसरे को बुरा लग जाएगा, मैं कोई इन्वाइट नहीं किया, मन तो स्मरण कौन करेगा, इसी वृत्ति को तो स्मरण करना था, स्वाहा अस्तित्व ही नहीं है मेरा। जो भक्ति करेगा ना उसकी सबसे एक लक्षण आएगा भक्ति का कि उसकी किससे बात करने का मन नहीं करेगा उसमें, ये अगर भक्ति करे तो ये लक्षण जरूर आना चाहिए, किससे बात करने की इच्छा नहीं। ये नारायण हरि भक्ति में ये पांचों ना सुहात, पांच चीजें होती हैं, बहु बात उसमें से एक है, लोगों से बात करना, लोग जाए इकट्ठे वहां जाने की इच्छा होना, नशा चलने का मतलब है किसी की शक्ल देखने की इच्छा ना हो, मंत्र स्मरण किया ना स्वाहा, तो आप तो रहे ही नहीं तो किससे मिलना क्यों चाहोगे, आप रहोगे तो ही तो किससे मिलना चाहोगे, जब ने स्वाहा किया तो रहा कौन, तो बचा ही नहीं, समझ पा रहे हो, ये उलझे मन को ही सुलझाना है, ये फिर वही गंदे के कीड़े की तरह है, उसको किसी भी अच्छी जगह में ले जाओ, कीड़ा फिर वही नाली में जाएगा, कीड़े को गंदे कीड़े को नाली के कीड़े को यदि कमल के ऊपर भी ला दो तो वो क्या करता है कीड़ा, फिर नाली में जाता है, उसको कमल नहीं चाहिए, कमल का फूल नहीं चाहिए, लोटस फ्लावर लोटस फ्लीट कुछ नहीं चाहिए, उसको नाली चाहिए, हमारा भी हमें लोटस फ्लीट कुछ नहीं चाहिए भगवान के किसी भी, हमको अब वही गंदे से खाना पीना, गंदे संसारी संबंध, अपवित्र पूर्ण रूप से स्वार्थी, किसको स्वाहा कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं छोड़ना चाहते। भक्ति का मतलब ही एक ही है, जो पकड़ के बैठे हैं उससे खोला छोड़ दिया, भक्ति कोई कुछ भी और मतलब नहीं, हम तो इतना सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं, जो जो कंसेप्ट पकड़े हैं, मेरा कोई है और मुझे कुछ चाहिए, बस इस कंसेप्ट को छोड़ दो, यही भक्ति है और कुछ भी नहीं है भक्ति का मतलब, शास्त्रों में यही है सार बात। हमारा क्या है, हम सारे रिचुअल करेंगे, 16 माला 64 माला मंत्र स्मरण योग पीठ डीटी वर्षे, तो छोड़ेंगे किसी चीज को नहीं तो फिर मिलेगा भी कुछ, छोड़ दो भाई, मुट्ठी सारी समस्याएं मुट्ठी बंद करके बैठे हैं, सारी इच्छाएं लाइफ जिस तरह कुछ नहीं, चलो वो छोड़ता है और रिजिस्ट करते पकड़, जैसे मान लो कोई इस मुट्ठी को छुड़वा रहे हो, वो दबवा रहा, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हाल है, जबकि क्या होना चाहिए, कोई छुड़वाना नहीं चाहता, मैं स्वयं स्वाहा, आहुति तो आप डाल रहे हो ना, तो कोई प्रेशर थोड़ा ना करेगा खुद इसको, नहीं फिर तो स्वाहा हुआ ही नहीं, स्वाहा तो भी अपनी स्वेच्छा से किया ना, परीक्षा से स्वाहा थोड़ा होता है, परीक्षा से तो आहुति का स्वाहा हो सकता है, वो यज्ञ वाली आहुति बीज और वो स्वाहा हो सकते हैं परीक्षा से, ये तो स्वाहा स्वेच्छा से ही होगा, झूठ का काम नहीं है इस आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल लाइफ में ओनली वन थिंग वर्क्स, सत्यता, सत्यता से मंत्र स्मरण करें, हे गौर मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता हूं, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता हूं, बस। कैसे याद करें महाप्रभु को, महाप्रभु ऐसे हैं कि महाप्रभु रोते हैं, रोते अक्सर है, अष्ट सातवें विकार में एक रोना भी होता है, क्रंदन, उनका क्रंदन भी ऐसा होता है कि जब उनका क्रंदन होगा ना तो पत्थर का भी, अगर किसी का हृदय होगा ना वो भी पिघल जाएगा, ऐसे क्रंदन, कहां है कृष्ण, कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, ऐसा हृदय, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, प्रश्न मन में उठ रहा होगा, इसलिए बता रहे हैं कि यह स्मरण करोगे महाप्रभु की सेवा में हूं तो अब ये देख रहे होंगे, ऐसे पछाड़ ताके नीचे गिर जाते हैं रोते हुए, क्रंदन करते हुए हमारी हालत खराब हो जाती है, अविष्ट चित्त हो जाता है। किसमें? महाप्रभु के रोने में। सेवा कैसे कर रहे हैं? साथ में खड़े हैं। सेवा में झोंकना है ना, कैसे सेवा कर रहे? साथ खड़े हो, गिर ना जाए महाप्रभु। और ऐसे पसीने की गंगा निकलती है महाप्रभु के शरीर से, हमारे में से पसीने की बूंद निकलती है, महाप्रभु के पसीने की गंगा की धाराएं निकलती है। इसलिए चामर अच्छे से करो, पसीना ना है महाप्रभु। महाप्रभु जब रोते हैं तो आपका एक कण भी और कुछ नहीं सोच सकता उस समय। महाप्रभु का रोना इतना करुण होता है, इतना द्रवित करता है कि होश खराब हो जाता है। और जब वो हंसते हैं तो ऐसे फूल बरसते हैं कि व्यक्ति मंत्र मुग्ध होके एक पुतली की तरह, पुतली को जानती है, जिस जगह बैठ गई बस बैठ गई। पुतली माने डॉल, स्टैचू बन जाता है, वो कुछ सोच नहीं सकता। क्यों बता रहे हैं? जब महाप्रभु हंसेंगे तो हमारी भी ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि सेवा कर रहे हो, साथ में देख रहे हो महाप्रभु हंस रहे, उनके हंसने में हृदय आविष्ट हो जाता है, उनके रोने में हृदय आविष्ट हो जाता है। और जब चलते हैं उनकी भंगिमा अद्भुत डोलन, तो सेवा करते करते ये चीज याद होनी चाहिए, उनका हंसना, उनका रोना या उनका चलना, ये मानव के जैसा नहीं है। किसी मानव के पसीने की गंगा की धाराएं निकलती है। अच्छा, जब कोई रोता है संसारी व्यक्ति तो अच्छा लगता है, महाप्रभु आनंदमय लगते हैं, तब भी रोते हुए भी आनंद की मूर्ति रो रही है। कौन रो रहा है? प्रज्वलित आनंद की मूर्ति रो रही है, सोने की मूर्ति प्रज्वलित आनंदमय प्रज्वलित सोने की मूर्ति रोते खुश हो, खुश वो आनंदमय होता है। जैसे पीपल का पेड़ का पत्ता होता है, जब जोर की हवा आती है तो कैसे होता है? पूरा ऐसे होता है पूरा, वैसे ही महाप्रभु के शरीर में पूरी ऐसे कंपन होते, पूरा शरीर कंपा है हमारा, ऐसे होता है जरा सा तो थोड़ा सा हुआ तो पूरा शरीर एक साथ फुल कायम है। अब ये देख रहे हो पूरा शरीर पत्ते की तरफ फुल कायम है, कभी ऐसे, कभी तो चल रहे हैं राधा रानी की तरह, गति बिल्कुल पुरुष की नहीं होती, फिर बिल्कुल स्त्री महाभावयुक्त गति। डोलन तो डोलन है, चलन जो है वो अलग है, महाप्रभु की राधा भाव में चलन, नेत्र की भंगिमा बदल जाती है, मुख का वर्ण बदल जाता है, लज्जा होती है ना, महाप्रभु अपनी वही उत्तरी को चादर बना के, अपनी साड़ी का उत्तरी बना के चल रहे हैं, लज्जा युक्त। जब रो रहे होते हैं महाप्रभु तो बस एक ही है, भाई मेरे प्राण बचा लो, भाई मेरे प्राण बचा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वो सबसे यही एक ही बात जानते हैं, पूछते हैं कृष्ण कहाँ है। तुम तो कृष्ण को जानते हो, मुझे कृष्ण से मिला। हमारा भी यही होना चाहिए, गौर कहाँ है, आप तो गौर को जानते हो, आप गौर को मिला। अपने आप को स्वाहा करने में ही समझदारी है, जब तक बचाए रखोगे अपने आप को तो कभी साक्षात्कार ईश्वर का नहीं होगा, जरा सा भी बचाए रखोगे। हमें तो पूर्ण रूप से अपने आप को बचाया होगा, और भी क्यों करना है? चैतन्य चंद्रामृत है ये ग्रंथ, इसमें बताया गया यथा यथा गौर पदार विंदे विंदे त भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुदाम्बु राशि। माने गौर चरणों में अब बोलेंगे हम तो राधा कृष्ण की मंजरी बनना चाहते थे, ये गौर का कैसे आ गया? गौर का इसलिए आया कि जिस मात्रा में गौरांग चरणों में जैसे जैसे भक्ति भाव संपादन करेंगे हम लोग, जिस मात्रा में गौर चरणों में प्रतियोगी राधा रानी के चरणों की राशि, राधा रानी का सुख, राधा रानी से हमारा संबंध उस मात्रा में स्फुरित होता रहेगा। अकस्मात ऐसे ऐसे जैसे गौर में प्रीति वैसे राधा की, क्यों? क्योंकि गौर राधा भाव में ही तो है। अच्छा, गौर की सेवा करोगे क्या? पहले उन्हें जानोगे, देखोगे, महसूस करोगे राधा भाव में, तो राधा भाव की सेवा तो राधा की सेवा होएगी। अकस्मात गोर के क्यों प्रश्न उठता है, आज उत्तर समझ आए, राधा भाव की सेवा, राधा की सेवा, राधा भाव की सेवा करते राधा राधा की राधा की सेवा हो। हृदय में अकस्मात वैसे वैसे राधा चरण सुधा अमृत राशि प्रवेश करती जाती है, कैसे, जिस मात्रा में गौर में प्रीति होती जाती है। परिक्रमा करके कल जा रहे हैं, ये नहीं कि अगले साल तक हमें गौर से या नवदीप से कोई मतलब नहीं है, इसको हृदय में बसा के जाना है। अब की बार गलती नहीं करनी, बहुत परिक्रमाएं ऐसे कर ले बिना भोंदू की तरह, अब के नहीं करनी, अब मैं स्वाहा करूंगा, बस यज्ञ में बैठूंगा रोज। आशा प्रेम महोत्सव यदि शिव ब्रह्मा अखिल अद्भुत गौरे धामी दुर्विगाहम हिमोदरे तदा रज्यताम। इसका माना है शिव ब्रह्मा के लिए जो दुर्लभ है मंजरी भाव, तो शिव ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, यदि उस अद्भुत प्रेमानंद को प्राप्त करने की यदि तुम्हारी इच्छा है, यदि इच्छा है तो अति उदार गौर कांति श्री कृष्ण चैतन्य में मन को अनुरक्त करो। तुम मंजरी बनना चाहते हो, हां जी, तो करो क्या, अनुरक्त अपने आप को श्री कृष्ण चैतन्य श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में मन को अनुरक्त करो। करोगे तो क्या होगा, जिस मात्रा में अनुरक्त होगा गौर चरणों में, हृदय में अकस्मात राधा रानी के चरणों की स्फूर्ति सम्मान सब स्फूर्त उसी मात्रा में होगा। जी गौर चरणों में प्रीति ही वो थर्मामीटर है जिससे पता चलेगा कि आपकी राधा रानी के चरणों में प्रीति हो रही होगी या नहीं होगी। ये अनर्पित चरी है, ये उन्होंने दिया है महाप्रभु ने, केवल भक्ति को दुर्लभ बताया गया है शास्त्रों में, सुना होगा आपने चैतन्य चंद्रमित्र क्या आचार्य पादगण क्या सुंदर भाषा का प्रयोग करते हैं, अहो ना दुर्लभा मुक्तिर ना चा भक्ति सुदुर्लभा। कहते हैं मुक्ति तो दुर्लभ है ही नहीं और भक्ति भी सुदुर्लभ नहीं है कोई, शास्त्र बोलते हैं ये कहते हैं नहीं, कह रहे भक्ति तो कैसे दुर्लभ, बड़ी आसान है भक्ति। गौर चंद्र प्रसादस्तु वैकुंठे अपि सुदुर्लभम, परंतु भक्ति जो विष्णु की भक्ति है वो तो दुर्लभ नहीं है, पर ये तो गौर कृपा है, ये वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होती, ऐसी सुदुर्लभ है, और बिना गौर कृपा के मंजरी भाव में प्रवेश हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो कितनी सुदुर्लभ है गौर कृपा, वैकुंठ में नहीं मिलती, हमें यहां मिल रही है, जो चीज वैकुंठ में नहीं है वो हमें यहां मुफ्त में मिल रही है, और हम अपने हाथ छोड़ना नहीं चाहते, बस जन्मों जन्मों से क्या है वही मेरी पत्नी मेरे माँ मेरा बेटा, बस वही चिड़िया के, बस वो चिड़िया के न बच्चे चूजे वही जीवन उसका हमारा यही जीवन, चिड़िया चूजा की चूजू चूजे चूजा चूजा गिरी में अपना जीवन व्यतीत कर, हम अपने यही गिरी में शर्मा गिरी और वर्मा गिरी में, सिर्फ हाथ खोलना भक्ति का मतलब कुछ नहीं, यूं खोल दिया हो गई स्वाहा। मंत्र 108 को छोड़ो, एक के बाद दूसरा नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा उसी से, एक मंत्र से, सच बता रहे हैं हृदय शरीर झेल नहीं पाएगा। मंत्र महाप्रभु पहले बहुत नटखट थे, दीक्षा से पहले, दीक्षा के बाद उन्होंने पहले वाले कोई भाव ही नहीं रहा, हम वैसे के वैसे यहां, ये तो बड़ा रौनकी है, रौनकी नहीं तुम इडियट हो, क्यों, क्योंकि तुम पूरे वैसे के वैसे ही हो, होता ना, ये तो चीज बड़ा रौनकी है, भक्ति भी करता है तो बाहर वालों को भी पता है कि तुमने कोई बदलाव नहीं आया, जबकि महाप्रभु इतने नटखट थे, और जब दीक्षा हुई तो महाप्रभु को विनय अवतार बोला जाता, विनय माने विनम्रता का अवतार, तो ना एक अवतार हो गया हो किसी चीज का, महाप्रभु विनम्रता के अवतार हो गए थे, पहले बड़े नटखट थे, तो ऐसे नटखटपन की आश्चर्य, जैसे अभी आपने नाटिका में देखा भोजन खा रहे, परंतु विनम्रता के अवतार हो गए थे, यदि हम भी भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी विनम्रता का अवतार नहीं हो पाए, प्रचुर मात्रा में विनम्रता तो आनी ही चाहिए। शरणागत क्यों हो गौर को, कि महाप्रभु के जो भाव है, महाप्रभु की जो भंगिमा है, नेत्रों का चलन है, महाप्रभु का स्पर्श है, आपको पता है स्पर्श क्या होता है? बाकी ईश्वर का स्पर्श मालूम है क्या होता है? ईश्वर का ऐसा स्पर्श होता है, अब स्पर्श हो जाए इस स्थिति में तो आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, इतना आनंद में स्पर्श होता है ईश्वर का, हरि का। और गौर हरि का, महाभाव युक्त हरि का स्पर्श, मधुर डोलन, मधुर स्पर्श, मधुर रोदन, मधुर हसन, इन सब में ऐसी शक्ति है जो जितने भी उपस्थित भक्त होते हैं, यानी कि हम भक्त स्वरूप दामोदर रामानंद राय की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम उस अवस्था को देख के पूर्ण से विवश हो जाते हैं। विवश माने और कुछ, होश नहीं रहता, वश, वी वश, वश नहीं रहता अपने ऊपर। महाप्रभु की कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें व्यक्ति बच सके, वश ही नहीं रहता, बिल्कुल बिक जाता। क्या स्त्री क्या पुरुष, कोई अन्य बात ही नहीं रहती किसी के हृदय में। महाप्रभु के स्पर्श, उनके हिलना, उनका डुलना, कोई अन्य ध्यान या अन्य किसी कोई चीज की चिंता करनी, वो शक्ति ही नहीं रहती। वो लोग कनेक्शन ही कट गया किसी चीज का चिंता करने का, शक्ति ही नहीं रहती कोई चीज का चिंतन कर सको। सभी के मानस में केवल निमाई, केवल गौर हरि, मानस में केवल गौर है। सबके माँ बाप वगैरह सब कुछ, मानस में कोई भी नहीं है, मानस में केवल गौर। हमारे भी मानस में केवल गौर होने चाहिए। अभी हमारा मानस में सब कुछ है माइनस गौर, गौर को छोड़ के सब कुछ है, सच बात है। इसी को माया कहते हैं। हमारा संसार में किसी से संबंध नहीं है और अनेकों से लगता है, इसे कहते हैं माया। माया मतलब जो नहीं है वो प्रतीत होने लगे। माया जो नहीं है, मेरा संसार में किसी से संबंध नहीं है, अनेकों से महसूस होता है, इसे कहते हैं माया। और गौर से संबंध है और किसी से संबंध नहीं है और वो महसूस नहीं होता, इसे कहते हैं माया। जो है वो ना लगे और जो नहीं है वो लगे, इसको माया कहते हैं। गौर हमारे प्राण हैं, वो हमारे कहीं पे भी नहीं है हृदय में, और जिनसे कोई लेना देना नहीं, ट्रेन के मुसाफिरों से वो ठूसे पड़े हैं। हृदय के एक एक वीन, एक एक ब्लड, हर में, नसों में, नाड़ियों में, इसी को माया कहते हैं। माया और किसको कहते हैं? भूतनी थोड़ा कोई माया, माया इसी को कहते हैं कि जो नहीं है उसकी प्रतीति करवा दे और जो है उसका विस्मरण करवा दे। संबंध है गौर से निकटतम, निकटतम बोलना भी अब इंसल्ट है, क्योंकि निकटतम का मतलब है कि और किससे भी कोई संबंध की कोई संभावना है, तभी तो निकट है कोई। एकमात्र संबंध हमारा गौर से, भगवान से हमारा निकटतम संबंध नहीं है। निकटतम का मतलब होता किसी निकट है, जैसे आप हमारे निकट है, मतलब दूर तो वो भी दिख रहा है ना, दूर तो ये भी है, दूर तो ये भी है, आप केवल निकट हो और भी है, संबंध में ये बात नहीं है। भगवान निकटतम नहीं है, भगवान से ही सिर्फ मेरा संबंध है। ये बात समझेंगे तो स्वभाव होगा पहली बार।